ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। अभी तक हम लोग जो सेशन सुन रहे थे, मोस्टली वन टू वन कन्वर्सेशन होता था। अभी हमारा समझ एक बहुत सुंदर पैनल है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, फ्रॉम साइंस, फ्रॉम इंजीनियरिंग, फ्रॉम जर्नलिज्म, फ्रॉम मेडिकल हेल्थ केयर, सभी फील्ड से है। और ऐसे टॉपिक पर इंट्रैक्शन करेंगे जो टॉपिक अभी हमारे लिए, सबके लिए, चाहे हाउसवाइफ्स हो, चाहे यूथ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, सबके लिए बहुत रिलेवेंट है। और वो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं योगा फॉर एक्सेलेंस, योगः कर्मेषु कौशलम्, अर्थात योग द्वारा कैसे हम कर्म में कुशलता लाएंगे, हमारा जीवन में, हमारा लाइफस्टाइल में, हमारा बिलीफ सिस्टम में, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल में, हमारा वर्क एफिशिएंसी में हम कैसे इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो प्रोग्राम का शुरुआत, जैसे शिवानी बहन ने हम सबको बहुत इंस्पायर किया कि एक मिनट हम लोग साइलेंस से शुरू करते हैं। प्लीज हैव साइलेंस फॉर वन मिनट एटलीस्ट, ओके। ओम शांति। तो हमारा ऑनरेबल पैनलिस्ट आज का इस सेशन के लिए मिस्टर संजय चंद्रा, सीनियर टीवी जर्नलिस्ट न्यू दिल्ली, प्लीज कम टू स्टेज। मिस्टर हंसमुख पधारिया, असिस्टेंट वीपी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बदोदरा, प्लीज कम टू स्टेज। प्लीज गिव बिग हैंड हमारा पैनलिस्ट को स्वागत करें। डॉक्टर नरेश कुमार गोयल, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एनडीआरआई करनाल। विजय प्रमिला राव, साइंटिस्ट फ्रॉम बार्क मुंबई। मिस्टर एमएल पनवा, ईडी फ्रॉम ओएनजीसी बड़ोदरा। मिस्टर प्रशांत राव, जीएमआईटी गुजरात रिफाइनरी आयोसेल बड़ोदा। मिस्टर बीरेंद्र सिंह, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ग्वालियर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन जो कि हेल्थ केयर में, मेडिकल केयर में, कार्डियक केयर में एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, हाउ विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, कार्डियक ब्लॉकेजेस कैन बी क्योर्ड। हृदय का जो धमनी में जो ब्लॉकेज होता है उसको ठीक किया जा सकता है विदाउट मेडिसिन, विथ इंटरवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल। डॉक्टर सतीश गुप्ता, प्लीज कम। एंड माय सेल्फ अरुण साहू। हम अभी जो आज के टॉपिक है योगः कर्मेषु कौशलम्, उसका शुरुआत हम करने का पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि योग क्या है। अभी तक हम सबको योग का सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 जून को। So me personally, I have come from a professional field where steel and power, they are being manufactured, they are being generated. So last 22 years, हमने स्टील बनाना पावर जनरेट करना देखा है और उसमें इन्वॉल्व रहा। तब जब ब्रह्मा कुमारी जी का कॉन्टैक्ट में आया और लास्ट टू डिकेड्स आई एम सीइंग ब्रह्मा कुमारी जी ऑल्सो जनरेटिंग स्टील एंड पावर, आप बोलेंगे कैसे? स्टील एक स्टील फिजिकल स्टील है और उधर फिजिकल पावर है और यहां स्टील स्पिरिट और इनर पावर, ये दोनों चीज को ब्रह्मा कुमारी जनरेट कर रहे लाइक ए फैक्ट्री कंटिन्यूअसली राउंड द क्लॉक। जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स आता है और एक आउटपुट जनरेट होता है और बीच में एक प्रोसेस रहता है, ऐसे ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आते हैं और एक प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, प्रोसेस को अंडरगोन किया जाता है और उसका बाद आउटपुट होता है, दे बिकम डिवाइन बींग, दे बिकम वैल्यूएबल वैल्यू बेस्ड ह्यूमन बींग, जिसको हम बोलते हैं खुशनुमा जिंदगी। और जो प्रोसेस है व्हिच कन्वर्ट्स raw material to final product, that process is called yoga, we call raj yoga. Raj yoga, spiritual meditation and spiritual wisdom combined, wo is process ko define karta hai aur hum sabko, jaise Shivani behan ne bataya ki satyugi गोल्डन एजेड ह्यूमन बींग रूप में कन्वर्ट करता है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड योगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन बींग टू ए एलिवेटेड ह्यूमन बींग, फ्रॉम नॉर्मल कलियुग टू ए गोल्डन एज। तो योगा क्या और कैसे हमारी बेसिक परफॉर्मेंस लेवल में, हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, उसके लिए हमारा बहुत सारा एक्सपर्ट्स है, तो आप सबको आज शेयर करेंगे और एंड में थोड़ा इफ टाइम परमिट्स आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं पैनलिस्ट को, तो उससे इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे प्रोग्राम हम शुरू करने का पहले हम 3 मिनट परमात्मा को याद करेंगे और कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। Thank you. अपना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो
नाउ आई रिक्वेस्ट हमारी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स to give bouquet and badges to our honorable panelists. Dr. Satish Gupta, our chairperson. Pramila, Dr. Goyal, and Mr. Hasmukh Padhaya. हम लोग अभी सेशन शुरू करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पैनलिस्ट को तो एटलीस्ट फर्स्ट राउंड विल स्पीक ऑन दिस टॉपिक ऑन 5 मिनट्स, 5-5 मिनट अपने इस टॉपिक पर शेयर करेंगे विद पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे हम योग को प्रोफेशनल लाइफ में वर्क लाइफ में हम यूज करके उसका बेनिफिट्स लेते हैं, कैसे वर्क एरिया में इवन फैमिली लाइफ में हम जब योग को यूज करते हैं तो उससे हमको प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में क्या गेन हो रहा है। तो मैं शुरू करता हूं मिस्टर हसमुख पधारिया साहब से। आप बेसिकली केमिकल इंजीनियर हैं और आपका प्रोफेशनल लाइफ काफी लंबा तक रहा है और अभी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ोदरा में अपनी सेवा दे रहे। तो आपके इंडस्ट्रियल लाइफ में हमारे बहुत डेलीगेट्स जो इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, आप थोड़ा शेयर करेंगे कैसे प्रोफेशनल लाइफ में योगा आपको हेल्प कर रहा है।
रिस्पेक्टेड महानुभाव मंच पर बैठे बीके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, भाई और बहनों, मैं हसमुख पठारिया, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, सेफ्टी डिपार्टमेंट में रिलायंस में काम करता हूं और मेरा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में मैंने योगा कर्मासु कौशलम को पूरा इंप्लीमेंट किया है। तो दो एग्जांपल मैं बताऊंगा आज आपको, अगर अच्छा लगता है तो आप तालियों से मुझे आशीर्वाद देना। मैं रिलायंस में सेफ्टी का जो ट्रेनिंग देता हूं वो वर्क टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, वर्क परमिट है, कन्फाइन स्पेस है, कुछ भी है। मेरा कोई भी ट्रेनिंग में मैं मेडिटेशन करवाता हूं, जो मैं इधर से सीख के गया था एंड दैट रिस्पॉन्स इज एक्सेलेंट। मैं कोई भी टेक्निकल प्रोग्राम में भी स्पिरिचुअल बात करता हूं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड दे आर गेटिंग मोटिवेटेड। मगर इसके साथ जो एक मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम जो करता हूं मेरा दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब, पर फिर भी मैं खुद इंटरेस्ट लेके इधर से मैं बहुत कुछ सीख के गया। और वो मैं एक दिन का आधे दिन का प्रोग्राम एम्प्लॉयज के लिए करता हूं। मगर जो मैं एक एग्जांपल दो एग्जांपल बताने वाला हूं, मेरा पर्सनल एग्जांपल है। मैं एक रिलायंस में एक अच्छी पोजीशन में हूं अभी, मगर मेरा हिस्ट्री देखे तो बहुत एक छोटे फैमिली से मैं आ रहा हूं। मेरे फादर कारपेंटर थे, मिस्त्री थे। मैं उसके साथ वेकेशन में जब स्कूल में पढ़ता था तब 10 किलोमीटर चल के उसके साथ मैं कारपेंटिंग का जॉब करने जाता था, और उसमें से जो पैसा मिलता था उसमें मेरा स्कूल का पूरा साल का यूनिफॉर्म और बुक्स आ जाती थी। और मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं भी उसकी तरह कारपेंटर बन जाऊं, मगर मेरे सब क्वेश्चन माइंड में एक चीज अच्छी तरह डाल के रखी थी। मेरा लक्ष्य था, मेरा गोल था कि इंजीनियर बनना है, और मैं इंजीनियर बना। अगर कोई भी हमारा लक्ष्य के साथ, अगर हमारा कर्म के साथ अगर बर्निंग डिजायर ज्वाइंट होती है, बर्निंग डिजायर है, कॉन्फिडेंस है, डाउट नहीं है, भरोसा है, श्रद्धा है, तो आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और दूसरा, ये सब्जेक्ट से मैंने सीखा कि कुछ भी करना है आपको तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, अलग करना है। आप घर पे हो, फील्ड में हो, प्लांट में हो, किधर भी हो, कुछ अलग करना है। ट्रेनिंग में भी हो तो अलग करना है, और हमें स्मार्ट वर्क करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिल से करना है। वी हैव टू लव अवर जॉब, हम जो भी करते हैं उसको प्यार करो, वरना उसको छोड़ दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने मेरी लाइफ में 100% किया, क्वालिटी किया। मैंने जब भी रिलायंस में कुछ भी काम किया, और उसकी वजह से मुझे मेरा ग्रोथ भी हुआ, प्रमोशन भी मिला। सो दैट इज द एडवांटेज कि आप क्वालिटी जॉब करो, दिल से करो। और दो चीज और भी मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी किधर भी आप कंफर्ट जोन में मत रहो। कंफर्ट जोन में रहे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, आप ग्रेट नहीं बन सकते। मैं कभी भी लाइफ में कंफर्ट जोन में नहीं रहा, और मेरा ऑर्बिट चेंज करता रहा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था। अभी तो ये मेरा, मैं बोल सकता हूं कर्मासु कौशल्यम, योगा कर्मासु कौशल्यम मेरा डीएनए में आ गया है। तो आपको भी यही करना है, अगर लाइफ में खुश रहना है, हैप्पी रहना है, सुखी रहना है। दूसरा एक शॉर्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आपको अच्छा लगेगा, मेरा पर्सनल है, मगर मैं शेयर करना चाहता हूं जो बहुत यूजफुल है ऐसा मैं समझता हूं। मेरी मां मेरे साथ 30 साल से रहती है, अभी उसकी एज 90 इयर्स हो गई है, और 4 साल से वो सब कुछ भूल जाती है, सब इधर उलट पुलट करती रहती है, उसका हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। मगर मैंने लाइफ में 3 बात सोच के रखी है अच्छी तरह, कि मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ अभी तक सब कुछ मेरा अच्छा ही हुआ है, और जो भविष्य में होने वाला है वो बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से, और मेरी मां के आशीर्वाद से हुआ है। दूसरी बात, जो भी मेरा प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, मुझे हंसते हुए सहन करना है या रोते हुए सहन करना है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि हंसते हुए सहन करना। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा भी अभी वो सब कुछ हंसते हुए दे आर एंजॉइंग, यानी मेरी मदर को वो हेल्प करते हैं। और तीसरा, कि आज जो मेरी मां मुझे परेशान कर रही है वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि कर्म की थियोरी के हिसाब से मैंने कभी न कभी, ये जन्म में तो नहीं लगता है मुझे, मगर 5 जन्म में मैंने मेरी मां को परेशान किया होगा। बजा दो तालियां, बजाना है तो अच्छी बात लगती है। तो मैं यही समझता हूं। और लास्ट में 2 लाइन बता के मैं नेक्स्ट स्पीकर को दूंगा। मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर ये जो हमारा योगा कर्मासु कौशलम कोई इंप्लीमेंट करता है ना, तो हमारा देश का जवान है, हमारा देश का सैनिक है। हमारा देश के जवान के लिए भी आप ताली बजा दो थोड़ी। वो 100% वो इंप्लीमेंट करता है, दिल से करता है। वो हमारे देश की बॉर्डर पे खड़ा रह के अपनी जान दे के भी हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए हम इधर बैठ पाए हैं। तो ये जवान के लिए मैं दो लाइन बोलूंगा। हम देश के पहरेदारों को वतन अपना प्यारा है, हम देश के पहरेदारों को वतन अपना प्यारा है। तन मन धन से भी जतन उसका प्यारा है, तन मन धन से भी जतन उसका प्यारा है। अरे कलंकित जिंदगी जीना न हमको, हमारा देश का जवान क्या बोलता है कि अरे कलंकित जिंदगी जीना न हमको, उस जिंदगी से बेहतर कफन हमको प्यारा है, उस जिंदगी से बेहतर कफन हमको प्यारा है। थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति। हसमुख साहब जैसे नाम है ऐसे उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। हम अभी हमारी प्रमिला बहन से हम थोड़ा सा शेयर सुनेंगे। पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों चीज का आप एक एग्जांपल है, बैलेंस रखे। जैसे हम जानते हैं आटम जो है साइंस का बेसिक एंटिटी है, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग हम आत्मा का बात करते हैं, ऐसे एक साइंस का बेसिक पार्ट है आटम। और प्रमिला बहन उस एटॉमिक फिजिक्स उस एरिया का एक्सपर्ट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में उन्होंने करीब मोर देन 3 decades अपनी सेवाएं दी। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस और साइलेंस दोनों को कंबाइंड रखकर कैसे पर्सनल लाइफ में प्रोग्रेस किए, प्रॉस्पेरिटी लाए। और एट प्रेजेंट शी इज फुली डेडिकेटेड ब्रह्मा कुमारी टीचर एंड रेंडरिंग हर स्पिरिचुअल सर्विस टू ऑल ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो प्रमिला बहन से हम ये सुनेंगे वास्तव में हम योग को कैसे हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम कहते हैं हैप्पी माइंड्स प्रोड्यूस हैप्पी रिजल्ट्स, और योग उस मेंटल हैप्पीनेस को कैसे लाती है, प्रमिला बहन शेयर करें।
ओम शांति। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ये दोनों एक ही सिक्के के दो साइड है। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रामन्ना इनका भी कहना था और अनेकों का कहना है। मैं बीआरसी लाइब्रेरी में एक बार आइंस्टाइन का वहां स्टैचू था और आइंस्टाइन के स्टैचू के नीचे 4 लाइन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था फिजिक्स के रिसर्च में वो लिखा हुआ था। और मुझे बहुत वंडर लगा कि वो एग्जैक्टली उन्होंने जो आपको राजयोग में परम धाम बताया होगा ना, सोल वर्ल्ड बियॉन्ड द स्काई, एग्जैक्टली उसका उन्होंने अनुभव वहां लिखा हुआ था। तो उससे मुझे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं बीआरसी में रहेगी तो बाबा का परिचय देने के लिए और साइंस को स्पिरिचुअलिटी से ब्लेंड करने के लिए ही रहेगी, चाहे मुझे आवश्यकता हो कि नहीं हो। शुरू में फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जॉब की आवश्यकता थी, उसके बाद हमारे पिता श्री ब्रह्मा और परमात्मा शिवजी से मुझे विशेष रूप से वरदान मिला कि आप भारत की इतनी बड़ी संस्था में एटॉमिक एनर्जी में कार्य करती हो तो आप ये समझो कि आपको शिव बाबा ने रूहानी सेवा के लिए ही वहां रखा हुआ है। और यही वाक्य मैं रोज याद करके जाती थी। मुझे एक बार ब्रह्मा कुमारी लाइफ सरेंडर लाइफ प्राप्त करने के बाद बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती है लड़कियों को, ये मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। ब्रह्मा कुमारी का एक नशा है ना, वो नारायणी नशा होता है। तो सभी हमारी सगी सहेलियां आश्रम में रहकर हमारी बड़ी दीदी के साथ ईश्वरीय सेवा एंजॉय करती थी, और मुझे जॉब के लिए 8 घंटा ऑफिस में जाना पड़ता था। ये मेरे लिए बहुत रोज के लिए दर्द था दिल का। तो वो 8 घंटा भी मैं जुदा होना नहीं चाहती थी आश्रम से, लेकिन बाबा के दिए हुए इस वरदान को याद करके मैं रोज जाती थी, और उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जितने भी चेयर पर्सन और डायरेक्टर है वो सभी यहाँ आके गए, और पूरे 10,000 एम्प्लॉइज के बीच में सफेद साड़ी वाली करके मेरे को सब पहचानते थे। और मैं बस में से रोज सफेद साड़ी पहनते हुए उतरते चढ़ते जिन्होंने भी देखा वो सब राजयोगा मेडिटेशन लाइफस्टाइल से प्रभावित हुए और वो उसे फॉलो कर रहे। अर्थात अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए वो मेडिटेशन की लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर रहे, और टॉप लेवल के साइंटिस्ट वो भी, जो यहाँ आके गए, कई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पार्ट प्ले भी किया है। तो इसीलिए जब मैंने वो आइंस्टाइन के 2 वाक्य सुने, डॉक्टर रामन्ना का वो शब्द मुझे पता पड़ा, पहले मैं डरती थी कि सफेद साड़ी में मैं डिफेंस है, उधर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, तो लेकिन वो 2 बातों से मुझे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और प्रभु का वजह वरदान था तो मुझे किस बात का डर। तो मैं बिंदास रोज उसी वरदान को याद करते हुए ही जाती थी, और सुपर एन्यूएशन तक मैंने जॉब किया, पूरा किया, और एट द एंड ऑफ द आई मीन क्या बोलते उसको, रिटायरमेंट की जो पार्टी होती है उस समय सारे हमारे बॉसेस ने मेरी लाइफ को इतना अप्रिशिएट किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जो हर आत्मा अंदर से चाहती है, हर एक व्यक्ति जो अंदर से चाहता है, वो चीज उन्होंने मेरे में देखी। ये हमारा फॉल्स सेकेंडरी पर्सनालिटी होती है कि कोई समझता है मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई समझता है मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई समझता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई समझता है मैं सो एंड सो हूँ, कोई समझता है मैं जैन हूँ, मैं जैन धर्म को फॉलो करूंगा, मैं क्यों इनकी बातों के जाऊं, कोई समझता है मैं क्रिश्चियन प्रिंसिपल वाला हूँ, मैं क्यों इसकी बात को जान ये करूं। लेकिन आत्मा ये सब जानती नहीं है। आत्मा को जो ओरिजिनल चीज चाहिए वो चीज उन्होंने मेरे में देखी, और इसीलिए उन्होंने सभी ने अप्रिशिएट किया। मैं समझती हूँ कि मेरा जीवन इसमें ही सार्थक हो गया। धन्यवाद। ओम शांति।
जैसे प्रमिला बहन ने हम सबको इंस्पायर किया, ट्रूली स्पीकिंग व्हेन वी रियलाइज सेल्फ, व्हेन वी बिकम सेल्फ, विल रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल वर्च्यूज ऑफ सेल्फ। वही वर्च्यूज को रिफ्लेक्ट करना ही बेसिक कंडीशन, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। हम सभी चाहते हैं खुशी, हम सभी चाहते हैं, इवन वर्क लाइफ में हम देखते हैं, वर्क लाइफ में जब हम लोगों के साथ आते हैं, सभी को वही चीज का आवश्यकता होता है। सबको अप्रिसिएशन चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको खुशी चाहिए। तो वो एटमॉस्फेयर, वो क्रिएशन, जब हम अपने आप को इस स्टेज में, इस सीट में रहते हैं, तो वो दिस इज फाउंडेशन ऑफ राजयोगा। तो अभी हम साइंस से थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड में जाते हैं। जो हमारा ब्रदर जो कि जर्नलिज्म में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम कहेंगे काफी एक्सपीरियंस्ड है, संजय चंद्रा जी, जो कि नोएडा दिल्ली से आए हैं, और विशेष आपने फर्स्ट टाइम माउंट आबू में आए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आज बहुत पॉल्यूटेड हम देखते हैं, लेकिन उसमें रहकर कैसे योग को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई कर पा रहे हैं, हम संजय भाई से सुनेंगे। आप जी मीडिया से भी इन्वॉल्व रहे प्लस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया एडवाइजर रूप में भी अनेक सेवाएं दी। संजय भाई।
ओम शांति। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो सुनकर आप में से कई लोग खुश नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे। अब मैं किसी को यहां दुखी करूं ये मंच इजाजत नहीं देता, लेकिन मजबूर हूं अपनी आदतों से थोड़ा सा दुखी करना चाहूंगा। आप लोग तीन चार दिनों में दुखी नहीं हुए होंगे। एक्चुअली मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी बहन शिवानी जी यहां से कह के गई टीवी मत देखो। अगर आप लोग घर जाकर सब ऐसा करेंगे तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। एक्चुअली शिवानी बहन ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। टीवी देखने की जरूरत क्या है? सुबह उठकर टीवी देखने की जरूरत क्या है? हम क्यों टीवी के पीछे पड़ जाते हैं? हम क्यों मोबाइल के पीछे पड़ जाते हैं? हम क्यों अखबार के पीछे पड़ जाते हैं? आखिर उसमें हमें मिलता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है, शिवानी बहन ने भी सबको बताया, और आप सभी को सोचना चाहिए यह सवाल। हम टीवी देखें क्यों, क्या मिलता है? हम अखबार पढ़ें क्यों, क्या मिलता है? हम मोबाइल में सोशल मीडिया को देखें क्यों, क्या मिलता है? क्या कुछ ऐसा मिलता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता? आप लोग सब लोग टीवी मोबाइल अखबार सब कुछ देखते होंगे, क्या कोई ये बता सकता है कि ऐसा कुछ मिलता है उसमें जिसे छोड़ा नहीं जा सकता? मैं कहता हूं आपको, सुबह सुबह टीवी अखबार मोबाइल सोशल मीडिया बिल्कुल ना देखें, कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अब आप कहेंगे टीवी का पत्रकार कह रहा है टीवी मत देखो, यह कैसे संभव है? मैं अपने प्रोफेशन को पीछे ले जा रहा हूं, मजबूरी है पीछे ले जाने की, मैं जानबूझकर पीछे नहीं ले जा रहा, मजबूरी है पीछे ले जाने की। मजबूरी ऐसी है जिसके बगैर जिया भी नहीं जा सकता, हम जिंदा नहीं रह सकते, यह मजबूरी है। सूचनाओं का आदान प्रदान अगर रुक जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, सूचनाओं का आदान प्रदान जरूरी है। अभी मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं, अपनी सूचनाएं, अपना अनुभव मैं आपको दे रहा हूं, और आप अपना अनुभव मुझे देते हैं। यह सूचनाओं का आदान प्रदान है, अखबार टेलीविजन मोबाइल से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसे किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता, इसके बगैर देश दुनिया चल नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप टीवी सुबह मत देखो, शिवानी बहन ने कहा मत देखो, और मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप अपने अंदर कचरा भर लोगे, शर्तिया कचरा भर लोगे। यह सच है कि आप अपने अंदर कचरा भर लोगे। मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं, मैंने टीवी पत्रकारिता एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर शुरू की थी। अब अपना अनुभव बताता हूं आपको, क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैंने टीवी पत्रकारिता शुरू की। सबसे पहले दिन मुझे भेज दिया गया एक मर्डर स्टोरी को कवर करने के लिए। दिल्ली के साउथ दिल्ली के एक इलाके में एक बड़े महानुभाव की हत्या कर दी गई और मुझे भेजा गया कि आप उस हत्या को कवर करके आए। वो हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई, हत्या के पीछे कौन है, पूरी स्टोरी आपको निकाल के लानी है। पहले दिन और हत्या, पहले दिन हत्या से सामना हो गया। मैं माइक, टेलीविजन, कैमरा, क्रू सब कुछ लेकर पहुंचा वहां। जब पहुंचता हूं तो मेरा कैमरामैन पुराना था, वो पिछले 5-7 साल से जॉब कर रहा था टीवी जगत में, मैं नया था, मेरी ट्रेनिंग नहीं थी। वो कहता हटो हटो हटो, आप हटो इधर, मुझे डेड बॉडी की फुटेज वीडियो बनानी है, डेड बॉडी की फुटेज बनानी है। मैंने कहा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बना लेंगे, डेड बॉडी कौन सी भागी जा रही है, अभी बना लेंगे। कहता है नहीं नहीं, अगर इस डेड बॉडी की फोटो लेके नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इस डेड बॉडी की तस्वीरें अगर मैंने कैमरे में कैद नहीं की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हमने कहा इस बात से कोई मतलब नहीं है क्या कि हत्या क्यों हुई, अगर ये पता नहीं चला कि हत्या क्यों हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, जरा ये तो पूछ लें पहले कि इस बात के पीछे क्या है, कैसे है। बहरहाल मैंने ये बताना इसलिए शुरू किया, उसके पीछे वजह है। आप टीवी खोलेंगे, टीवी का शास्त्र है, टीवी का अर्थशास्त्र है, जो सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं सुबह सुबह टीवी में वही दिखाया जाता है जो सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। सपोज कीजिए हत्या, सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले टीवी वाले हत्या परोसेंगे, उनका अर्थशास्त्र यही कहता है। अखबार वाले फ्रंट पेज पर वही खबर छापेंगे जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं, ये उनका अर्थशास्त्र है क्योंकि वहां से उनको पैसे आते हैं, वही उनका बैकबोन है। तो शुरुआती दौर में मैं क्राइम को कवर करता रहा, बहुत मानसिक तौर पर तकलीफ होती थी, रात को घर पर नींद नहीं आती थी, डेड बॉडी के पिक्चर्स जहन में घूमते रहते थे, सोते वक्त भी वही ख्याल आता था। शुरुआती दौर में तो 2-3 महीने खाना खाना भी मुश्किल हो गया था, कभी डेड बॉडी के पास बैठे हैं, कभी मॉर्चरी में बैठे हैं, कभी किसी गुंडे के पास बैठे हैं, कभी किसी माफिया के पास बैठे हैं। इस देश का कोई ऐसा माफिया नहीं जिसको मैं न जानता हूं और वो माफिया मुझे न जानता हूं, इस देश में ऐसा कोई माफिया नहीं है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो संजय चंद्रा को जरूर जानता होगा क्योंकि मैंने उसका जीना हराम किया हुआ था एक वक्त में। तो टीवी का अर्थशास्त्र ये कहता है जो सबसे ज्यादा बिकेगा उसे सबसे पहले दिखाओ, जो सबसे कम बिकेगा, जिसको सबसे कम लोग देखेंगे उसको बाद में दिखाओ। यही मुश्किल हो गई हमारे लिए, सबसे बड़ी मुश्किल यही हो गई कि सबसे ज्यादा नकारात्मक खबरें बिकती हैं, सबसे ज्यादा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने इतने नकारात्मक खबरें की, मुझे क्राइम रिपोर्टर में भेज दिया गया जिसका टैग लाइन था चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, उसका टैग लाइन ये था। यानी अगर आपको सोना है रात को तो जागकर हमारा प्रोग्राम देखो। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे प्रोग्राम की टीआरपी का मतलब ये होता है कि कितने लोग उस प्रोग्राम को देख रहे थे। टीआरपी का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है, यानी कि संख्या कितनी थी। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, क्राइम पेट्रोल एक प्रोग्राम है जिसके दर्शकों की तादाद का अंदाजा आप नहीं लगा सकते और उसके एक एपिसोड की कीमत का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। लोग क्राइम देखते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा पर्सनल अनुभव यह है कि क्राइम से आपकी जिंदगी तबाह होती है। जो क्राइम होना है वो हो गया, जो घटना घटित होनी थी हो गई, अब आप देखकर क्या कर लेंगे? आप देखकर अपना जीवन क्यों बर्बाद करें? इसलिए आप अवॉइड करें, कम से कम सुबह तो जरूर अवॉइड करें उसे। हमारा पेशा है, हम उसे करेंगे, लेकिन आप लोग जरूर अवॉइड करें। शिवानी बहन ठीक कह के गई है, ओम शांति दोहराइए। मैंने आकर यहां ओम शांति सीखा है। अब मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा। करियर में बहुत सारे अनुभव हैं, उसको दोहराते दोहराते बहुत समय निकल जाएगा। बस एक लाइन ये है, हे परमात्मा, एक आईना ऐसा बना दे जो चेहरा नहीं नियत दिखा दे।
थैंक यू संजय भाई। ऐसे तो आप सबको पता है कि हमारा जो राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का एक मीडिया विंग है, जो कि वैल्यू बेस्ड मीडिया, उसके लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसे क्राइम और नेगेटिव न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए हमारा एक चैनल स्टार्ट हुआ है और काफी पॉपुलर हो रहा है, दैट इज पीस ऑफ माइंड चैनल, जो कि 24 आवर्स चलता है और विदाउट एनी एड, नॉट ए सिंगल एडवर्टाइजमेंट देयर, एंड प्योरली पॉजिटिव न्यूज, स्पिरिचुअल न्यूज, गुड न्यूज, ये सबको प्रमोट करता है। और उस न्यूज को देखने के लिए शिवानी बहन कभी रोकेगी नहीं, क्योंकि उसमें थ्रू आउट डे शिवानी बहन का इंटरव्यू और हमारे भाई साहब का भी इंटरव्यू और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल न्यूज कवर होता है। आप सभी भी देखते होंगे और उसका जरूर लाभ उठाइए। तो अगली कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर नरेश कुमार। नरेश कुमार गोयल, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट एनडीआरआई कर्नल से हैं, आप थोड़ा सा आपका अनुभव शेयर करें।
ओम शांति। ओम शांति। भगवान ने हमें तीन इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स दिए हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स हैं, ये हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल। ये बॉडी, ये शरीर हमें मिला है, हमने अपने पिछले कर्मों में पता नहीं कौन से अच्छे तप किए जिससे हमें ये शरीर का चोला मिला। माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज ए सोर्स ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन, एंड सोल डिवाइन एनर्जी, जो हम सब का एक रियल ऑब्जेक्टिव है लाइफ का कि हम उसको अचीव करें। नाउ व्हाट इज दिस योगा? ये तीन गिफ्ट्स जो भगवान ने हमें दिए हैं, उसमें योगा का रोल क्या है? योगा इज नथिंग बट यूनियन विद गॉड। नाउ व्हाट इज द पाथवे बाय विच वी अटैच विद गॉड? वो कौन से पाथवे हैं जिससे हम भगवान के साथ जुड़ते हैं? नाउ माइंड जो हमारा है वो एक सेंट्रल पोजीशन में है, वो लेफ्ट साइड में हमारा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और राइट साइड में हमारा वो डिविनिटी, वो डिवाइन एनर्जी जिसको हम सब पाना चाहते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। योगा, योगा इज ए मींस बाय विच वी डिटैच आवर माइंड फ्रॉम द बॉडी एंड वी अटैच विद द डिवाइन एनर्जी, दैट इज ए योगा। अभी शिवानी बहन ने जो लेक्चर दिया, उन्होंने कलयुग संस्कार की बात की और सतयुग संस्कार की बात की। जब तक माइंड हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये कलयुग संस्कार बनाता है। जैसे ही हम अपने मन को अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, ये सत संस्कार बनाता है। लेकिन अभी शिवानी बहन ने एक डाउट रेज किया कि आप तीन दिन के बाद अपने घर जब वापस जाएंगे, तो उनको डाउट है कि आप फिर से इस शरीर के साथ जुड़ जाएंगे, आप इस डिवाइन एनर्जी को छोड़ देंगे, ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों, उनको क्यों डाउट हो रहा है कि आप 3 दिन के बाद जाएंगे तो फिर से अपने घर में वही कलयुग संस्कार बनाएंगे, डिवाइन संस्कार नहीं बनाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे न जाने कितनी लाइफ जो हम पीछे गुजार चुके हैं, और इस प्रेजेंट लाइफ में भी हमने अपने कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स, द सीड्स ऑफ कर्मा, हमने पिछले जन्मों में अपने चित्त माइंड चित्त के अंदर ऐसे चित्त कर्मा इकट्ठे किए हुए हैं, जिनको वो 3 तरह के चित्त कर्मा है। एक है मल, मल इज ए डर्ट एंड डस्ट, जो पिछले कर्मों में हमने अपने मन के ऊपर उसको लपेट लिया है, और उसके लपेटने से क्या हुआ है कि हमारी वो डिवाइन लाइट, वो ज्योति जो हमारे सब के अंदर स्पिरिचुअल हार्ट में जग रही है, उसको ये कवर कर रही है। दूसरा है आवरण। आवरण एक ऐसा पर्दा है जिसने हमारे उस स्टार को, रोहिणी स्टार जिसको हम पाना चाहते हैं, उसको कंसील किया है। और तीसरा है विक्षेप, वो एक ऐसी कलयुग एनर्जी है जो हमारे माइंड को वेवरिंग, कांस्टेंट वेवरिंग करता है, और उस वेवरिंग की वजह से ड्यूअलिटी, हमारे मन के अंदर ये जो चीज अनरियल है वो हमें रियल महसूस होनी शुरू होती है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ योगा टू चेंज ओवर फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू डिवाइन कॉन्शियस, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड इन टीचिंग प्रोफेशन, मैंने ये देखा है कि आज हमारे बच्चे जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो टोटली सेकुलर नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उनका फाउंडेशन देखेंगे तो उनको कोई भी डिवाइन एनर्जी या आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। तो मैंने पिछले 20 ईयर्स से इस प्रोफेशन में, मेरे पास MSc PhD स्टूडेंट्स जो रिसर्च और टीचिंग में आते हैं, आई हैव ट्राइड टू ब्लेंड दिस योगा, आई हैव ट्राइड टू चेंज देम। आई ऑलवेज आस्क देम, इफ यू आर गेटिंग दिस मास्टर्स एंड डॉक्टर डिग्रीज, इट इज सिंपली ए पेपर। इफ यू हैव नॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू डिवाइन एनर्जी, द डिग्री हैज नो वैल्यू। आई ट्राइड, आई अटेम्प्टेड दिस नॉलेज ऑफ योगा फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स एट माई इंस्टीट्यूशन, एंड आई कैन टेल यू द ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स विच आई हैव पास्ड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, एंड दे हैव बीन ग्रिल्ड, दे हैव बीन गिवन दिस नॉलेज ऑफ डिवाइन एनर्जी इन दैट इंस्टीट्यूशन। और वो आज अगर आप उन बच्चों को अगर देखें, those students are totally different than the other students, and they are in real yoga and they are doing their duties at their respective places, and it has created a chain reaction. Those students are again spreading the same knowledge of yoga, this divine energy in the country. So ye divine yoga jo iska ek प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम यहाँ भी देख रहे हैं। पिछले 3 दिन से जिस ढंग से हम वहाँ खाना खा रहे हैं, कैसे वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे लेक्चर्स हो रहे हैं, निष्काम कर्म योगा इज एन प्रत्यक्ष एग्जाम्पल एट दिस इंस्टीट्यूशन। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है। ओम साईराम।
थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि ML पनवर साहब है, जो कि एक सीनियर पोस्ट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ONGC रूप में अपने सेवा दी, साथ साथ ब्रह्मा कुमारी का जो टीचिंग्स है उसका आप रेगुलर स्टूडेंट रूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली वर्क लाइफ में दो कॉन्सेप्ट आता है, एक वर्क विथ ओरी, एक वर्क विदाउट ओरी। जब हम गीता में लिखा है कर्मण्यस्य बाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, जब हम वर्क से अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास वो इनवाइट हो रही। तो पुनर्चर्च में रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर अपना ओपिनियंस देंगे।
ओम शांति।
ओम शांति।
आज का जो सब्जेक्ट इस पैनल डिस्कस कर रहा है, ये सबके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा कर्मासु कौशलम, लेकिन इसको पूरा बेनिफिट लेने के लिए, समझने के लिए हमें योगा को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है। कर्म हम लोग काफी जानते हैं, कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, इसमें बहुत साइंटिस्ट सारे मतलब पब्लिक फैमिलियर हैं। तो ये राज योगा जो ब्रह्मा कुमारी ने हमें टीच कर रही है, बताया है, समझाया है, पहले इसका पहला पार्ट है आप कौन हैं और आप क्या है, आप अपने आप को पहचानो। कोई जैसे अभी हम लोग कहते हैं हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, ये है, मैं उस पोस्ट में हूं, बिजनेस में हूं, पॉलिटिक्स में हूं, ये हमारा रोल है, हम वो नहीं है, हम आत्मा है, सोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और आत्मा के मन बुद्धि संस्कार सहित ये चेतन आत्मा है। तो ये जो संस्कार वाला जो पार्ट है, ये मन और बुद्धि मिलके जो हमारे डिसीजन को ओके करती है, वो हम ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं और वो हमारा संस्कार बन जाता है। कुछ इसको कर्म भी कहते हैं, ये संस्कार है। और ये संस्कार ये आत्मा के साथ हमेशा अटैच रहते हैं। जैसे अभी हमने सुना 84 जन्म लेते हैं, कोई 85 उसे कम भी लेते होंगे, जैसे सिचुएशन है। तो वो कर्म ये रिकॉर्डिंग ये उसके साथ जाती रहती है, और जब भी आप नया जन्म लेते हैं तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो बजती रहती है और वो आपके व्यवहार में आती रहती है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। तो ये आत्मा है, और आत्मा परमा इसका पिता परमात्मा है, और वो परमधाम के निवासी है। क्योंकि हम आत्मा है, परम पिता के संतान है, हम उनके बच्चे हैं, ये हमारा उनसे कनेक्शन हो जाता है, हम उनको याद करते हैं। और जो आत्मा के जो गुण हैं और जो आत्मा का रूप और जो है आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, और हमारा परमपिता परमात्मा भी बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, और उनको हम शिव बाबा के नाम से जानते हैं। तो जब ये राजयोग हम सुबह बैठ के अपने परमपिता से योग करते हैं, तो ये जितने भी हमारे गुण हैं, ओरिजिनल गुण है शांति, क्योंकि हम हमारे शिव बाबा शांति के सागर है। अगर आप उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे, योग लगाएंगे, बात करेंगे, तो वो शक्ति आपकी आत्मा के अंदर आती है, बढ़ती है, आत्मा और स्ट्रांग होती जाती है। ऐसे शांत गुण है आप, ये जो शांति सुख है जिसको हैप्पीनेस कहते हैं, सुख का सागर है, जिसको हम परमपिता परमात्मा को बोलते हैं हमारा सुख का सागर है। अगर आप उस सुख के सागर से कनेक्शन लगाएंगे तो आपकी आत्मा भी स्ट्रांग बनेगी और वो सुख शांति के लिए चाहेगी और हरेक को सुख शांति से देगी वो। तो ऐसे सात गुण हैं, सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद ज्ञान शक्तियां। तो ये सब जब हम राजयोग लगाते हैं तो ये सारे गुण हम उनसे बैठ के याद करते हैं और ये सारी शक्तियां हमारे आत्मा में भरती है और आत्मा स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए जब हम परमपिता को याद करते हैं और जब योग लगाते हैं तो हमारी आत्मा में बड़ी पावर आ जाती है, ताकत आती है, शक्ति आती है और उसके काम करने के लिए, कर्म करने के लिए एक दूसरी समझ आती है। अब इसका जब आप कहते हैं कि जब ये ज्ञान का अब हमारे जीवन में, घर में, सोसाइटी में, ऑफिस में इसका क्या बेनिफिट है या क्या रिपरकशन है या क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्प्रूव करते हैं, तो जब आप ये जानते हैं मैं आत्मा हूं और हम सारे आत्मा हैं और हम सब आत्मा भाई भाई हैं, जब ये पहला आपकी दिमाग में आता है तो आप सबको उस नजर से देखते हैं भाई भाई, आपकी दृष्टि चेंज हो जाती है और आपको बड़ा आत्मिक प्यार आता है और आप सबको अपने समान समझते हैं। तो एक तो आप ये दृष्टि देखने से आपको एक दूसरा भाव आ जाता है सबको समान में। लेकिन अभी हम कहते हैं कि हम तो ये मनुष्य जो सॉरी मनुष्य और स्त्री जो है उसमें है, ये जब हम आत्माएं इस धरती पे, इस कर्म भूमि पे जब अवतरित जन्म लेती है, तब हमारे जैसे जो लौकिक माता पिता है उनके जो गर्भ स्थित होता है उसमें वो आत्मा आके अवतरित हो, हम सब लोग पढ़े हैं, कोई पांच साल पांच महीने में आती है, कोई तीन में, बहुत सारे इसकी टॉपिक है, तो तब जाके उसमें हलचल होती है। तो वो एक प्रूफ है कि आत्मा ही एक शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है और वो जो धरणी है कोई, वो आत्मा कभी स्त्री का रूप लेके आती है, कभी पुरुष का रूप लेके आती है, लेकिन है आत्मा, वो उनके संस्कार होते हैं। तो अगर इस ज्ञान को रखते हुए अगर हम घर में भी अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, बेटों को पहले ये आपके आएंगे कि ये सब बराबर है, हम अपना रोल करने के लिए आए हैं, मैं घर में पिता का रोल कर रहा हूं, मेरी ये ड्यूटी है, लेकिन इसको सबको ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब जानता हूं। तो इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अगर आप ये इसको पक्का करके आप इसको व्यवहार करेंगे तो आपके व्यवहार में चेंज आ जाएगा, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सोसाइटी में हो। तो इसलिए जो आपकी कर्म में कौशलता आएगी, जो कर्म लिखा कर्म कौशलम, तो आप इस ज्ञान को जितना पक्का करेंगे, आप इसके लिए जितना योग करेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, जितना शक्ति भरेंगे, उसी हिसाब के आपकी आत्मा की ताकत बढ़ेगी और आप अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। जब आत्मा स्वयं को परिवर्तन करती है तो यह है हम सारे संसार परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इस ज्ञान से हम वहां धर्म, जाति, ऊंच नीच, तू ये वो, ये सब चीजें भूल जाते हैं और आदमी का डील करने का बड़ा एक वो आत्मिक भाव आ जाता है।
वाइंड अप कर देंगे।
तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो ये ज्ञान सीखा है आप घर जाके इसको स्ट्रांगली प्रैक्टिस कीजिए और ये आपके सब जगह काम आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। इसके कहकर मैं अपनी बात पूरी।
थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आमंत्रित करता हूं हमारे मंच पर ऐसा व्यक्ति है जो किसान है और पॉलिटिशियन भी है, दोनों है। बीरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मंच का आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और विशेष एग्रीकल्चर फील्ड में आपने बहुत सेवाएं दी हैं। तो विशेष आप आज के टॉपिक पर आपने रिसेंटली मेडिटेशन कोर्स भी सीखा और माउंट आबू पहले बार आए, आपको वेलकम है। और आप थोड़ा सा शेयर करेंगे कि स्पिरिचुअल विजडम, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग कैसे आपको मदद कर रहे हैं और विशेष पॉलिटिकल और एग्रीकल्चर फील्ड में।
ओम शांति। मैं वीरेन सिंह राणा ग्वालियर मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। और राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ मेरा दायित्व समाज के उन मानवों के बीच में है जो वर्तमान परिस्थितियों में पीड़ित है। मैं इस संस्थान का बहुत सूक्ष्म समय का विद्यार्थी हूं। अभी केवल मैंने 7 दिवस का अपनी दीदी के यहां ग्वालियर में सिटी सेंटर में चेतन दीदी के सानिध्य में 7 दिवस का कोर्स किया है। असल में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में अपनी बात बताना चाहूंगा कि मेरी आत्मा ने कैसे मुझे झकझोरा, जिसकी वजह से मैं संस्थान से जुड़ा। मुझे एक मित्र ने, एक कार्यक्रम था ग्वालियर के ब्रह्मा कुमारी का, मुझे भी अतिथि के रूप में बुलाया गया और उस कार्यक्रम में एक विषय था आंतरिक स्वच्छता से बाहरी स्वच्छता। मुझे बड़ा अच्छा विषय लगा, अपनी अपनी बात सब वक्ताओं ने कही, मैंने भी कहा और उस दिन से मुझे प्रेरणा मिली। तो इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ने का मैंने संकल्प लिया और मैं, मुझे बाबा ने प्रेरणा दी, अपना आशीर्वाद दिया है। मेरा जो उद्देश्य है वो बाबा की प्रेरणा से अवश्य सफल होगा। इस सूक्ष्म समय में मैंने पढ़ा, क्योंकि इसके पहले मैं जानता था कि एक ही योग होता है और वो योग कौन सा है जिसमें मानव सुबह ही सुबह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना ले, निरोगी हो जाए। परंतु मैं जिस संस्थान से जुड़ा तो मैंने देखा कि दूसरा योग सारे योगों का राजा है, राजयोग, इससे आत्मबल मिलता है और इस आत्मबल से मनुष्य अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। मैंने पढ़ा कि राजयोग करने से मानव का जीवन सफल करने में क्या क्या शक्तियां मिलती हैं। 8 शक्तियों का ज्ञान हुआ, 8 शक्तियों को पढ़ा तो और विश्लेषण मिला। आगे जब मैंने पढ़ा कि 8 शक्तियों के बाद हमें राजयोग से 16 कलाएं और 7 गुण, जिसको हम अपने जीवन में पहले सुना करते थे कि भाई ये आदमी तो सतगुणी है, इससे तो योग्य कोई है ही नहीं, तो हम नहीं जानते थे कि 7 गुण होते कौन से हैं। और मैं ही नहीं, मेरे हजारों भाई बहनें उन 7 गुणों के बारे में आज तक नहीं जानते होंगे। बड़े ईश्वर को प्राप्ति का, इस कलयुग की समाप्ति का, सतयुग के जाने का और अपने आप को, इस संसार को कर्मठ बनाने का बहुत बड़ा रास्ता है राजयोग। अभी मैं उसी पर विचार कर रहा था कि शिविर में भाग लेने के लिए देश विदेश के कई भाई बहनें यहां पर उपस्थित हुए हैं और शायद मैंने ये सोचा था कि मैं ज्ञान लेने के लिए भारतवर्ष की पावन भूमि माउंट आबू में जा रहा हूं, अपने घर में जा रहा हूं, परम पात्मा की शरण में जा रहा हूं और मुझे वहां और ज्ञान प्राप्त होगा। शायद उसी प्रकार यहां पर पधारे हुए सभी भाई बहन इसी उद्देश्य को लेकर आए होंगे और इसी बात को लेकर के हम सब यहां एकत्रित हुए। परंतु जब हमारी शिवानी बहन जी यहां पर बोल रही थीं, मैंने बड़ा गौर किया, उन्होंने किस बात के ऊपर कहा ये कि भाई आप यहां से जो सीख के जा रहे हो उसको याद रखोगे कि रेलवे स्टेशन पर भूल जाओगे। उनको आभास हो गया था कि मैं जो बोल रही हूं उसको कुछ ही लोग, कुछ ही मानव, कुछ ही भाई बहन ग्रहण कर रहे हैं, बकाया उसको ग्रहण नहीं कर रहे। वो आभास उनको कैसे हुआ? जब ये सांसारिक परंपरा है कि जब प्रशंसा का विषय आता है तो हमको तालियां बजाना चाहिए, जब कोई विषय ऐसा है कि मानव को या हमको सब भाई बहनों को ग्रहण करना है और उस आकृति पर चलना है, मन में ग्रहण करना है, वहां तालियां नहीं बजाना चाहिए। जब उन बहन जी ने देखा कि हां तो ग्रहण करने की बात आ रही है तो सभी भाई बहन तालियां बजा रहे हैं और भूलने के अपने प्रशंसा की बात आ रही है तब भी तालियां बजा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी बात को सभी लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो बिल्कुल उनको ये लगा कि कुछ लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम बार बार प्रयास करेंगे और जो हमारा सबका लक्ष्य है इस पावन भूमि पर आने का, उसको परम पिता परमात्मा की कृपा से सभी पूर्ण करेंगे। मैंने बिल्कुल संकल्प लिया है कि मैं किसी भी प्रकार के विकारों को अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने दूंगा और सभी भाई बहनों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भगवान ने हमको संदेश दिया है उसको हम लेकर चलें और अपने उच्चतम जो हमारा विषय है उसको सफल बनाएं।
धन्यवाद भाई साहब। मैं आमंत्रित करता हूं प्रशांत राव जी को, आप जनरल मैनेजर आईटी गुजरात रिफाइनरी आयोसेल बड़ोदरा में है। थोड़ा सा टाइम का कंस्टेंट है तो संक्षेप में आप शेयर करेंगे।
ओम शांति। मैं मेरा जीवन में जब ये गीता की श्लोक पढ़ना भी चालू नहीं किया था तब से इसको जीवन में निभा रहा हूं। जब मैं रिफ्लेक्ट किया अभी मैं सोच समझ में आया, बचपन में जब चलना चालू किया तब भी माँ बोलती थी बेटा ध्यान से चलना नहीं तो गिर जाओगे, यानी कुशलता के साथ अगर मैं चलूंगा तब मैं गिरूंगा नहीं। मैं स्कूल में गया पढ़ने के लिए, हमेशा पिता माता यही बोलते थे बेटा ध्यान से पढ़ना, तब तो मैं गीता भी नहीं पढ़ाता, तभी तो ध्यान भी नहीं जानता था। तो ध्यान क्या होता है कि जो काम आप करते हो उससे जुड़ जाओ, और हम हमेशा उसी से जुड़ जाते थे। तो हमारे समय में मैं इतना पढ़ते नहीं थे, हम दो दो घंटा पढ़ते थे सिर्फ। आज के दिन में मैं देखता हूं बच्चे आठ आठ घंटे पढ़ते हैं, मैं दो घंटा पढ़ के भी क्लास में हमेशा फास्ट आता था। कैसे? क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, अभी जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूं समझ में आता है, क्योंकि तब माँ बोलती थी बेटा ध्यान से पढ़ना। पढ़ने के बाद हम खेलने चले जाते थे, हम खेलने जाते थे, खेलने में भी ध्यान से खेलते थे। मैं एथलेटिक चैंपियन रहा हमारा स्कूल कॉलेज में, क्योंकि जब खेलने भी जाता था तब मैं ध्यान से खेलता था। यही चीज है कि योग कर्मसु कौशलम। मैं आईआईटी खड़गपुर का अलुमनी रहा, तो जब आईआईटी खड़गपुर में पहली बार गया, कॉलेज की लोगो जो है आईआईटी खड़गपुर में उसमें लिखा है योग कर्मसु कौशलम। स्कूल के दिनों में हम श्लोक तो पढ़ लेते थे, गीता में पढ़ना चालू किया हूं, क्लास 8-9 से पढ़ना चालू किए हैं, गीता के श्लोक तो आता था। पर जब आईआईटी खड़गपुर में गया, बोला ये एक एजुकेशनल इंजीनियरिंग एंड इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहां योग कर्मसु कौशलम का क्या लक्ष्य है, क्या मतलब है? फिर धीरे धीरे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किए, कर्मयोग की ध्यान करने पढ़ने गया। कर्मयोग से यह समझा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बोलते हैं, तुमने जो स्किल सीखा है उस स्किल की प्रयोग कर, तुमने युद्ध विद्या सीखा है, युद्ध क्षेत्र में आकर वैराग्य की बात मत कर, तुम्हें अभी युद्ध करना है, तो तुम जब इंजीनियरिंग पढ़ने आया है तुम इंजीनियरिंग पढ़। तो ये जब समझ में आया कि मुझे जो इंजीनियरिंग काम करना है पढ़ना है तो मैं इसको ध्यान के साथ करूं, और तो योग कर्मसु कौशलम वहां भी सफल हुआ। मेरा पीएचडी थेसिस बिना एनी क्वेश्चन मार्क में मेरा पीएचडी थेसिस अप्रूव हो गया, और फिर मैं इंडियन ऑयल में 25 साल से काम कर रहे हूं। तो आईओसी में कर्म क्षेत्र में जब हम देखते हैं, हमेशा बोला जाता है कि एक्सलेंस, ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है आज के दिन में कंपटीशन के बीच में, बच्चा को क्लास में भी एक्सेलेंस चाहिए, हमको सोसाइटी में एक्सेलेंस चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कम्पीट करने के लिए भी एक्सेलेंस चाहिए, वहां भी योगः कर्मसु कौशलम। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन गीता नहीं पढ़ते वो भी आज इंडस्ट्री में नंबर वन है। आप देखिएगा जापानीज ऑर्गेनाइजेशन हर काम एक्सेलेंस के साथ करते हैं। जब भी हम टीवी खरीदने जाते थे, हम कभी भी आज भी खरीदते हैं, हम सोनी टीवी खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि वहां एक्सेलेंस के साथ किया जाता है, जो कर्म करते हैं उसको एक्सेलेंस के साथ करते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, योग कर्मसु कौशलम यूनिवर्सल ट्रूथ है, गीता की भगवान की परमात्मा की वाणी है, तो ये हर समाज में हर समय में लग जाता है। तो मैंने इसको जहां जहां देखा वहां देखा कि ये सत्य है, ये वाणी है और हर जगह में है। आप देखिएगा मस्लोज मोटिवेशनल थ्योरी एक बोला जाता है कि क्या हमारा नीड है। पहला नीड है रोटी कपड़ा और मकान, फिजिकल नीड। सेकंड नीड है सिक्योरिटी, मस्लो बोलते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। थर्ड नीड है सोशल रिकॉग्निशन, जब ये दो हो जाए आपको समाज में लोग प्रशंसा दे। एंड चौथा नीड है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसलिए कि स्पिरिचुअल नीड की जरूरत होता है। तो जो मस्लो बोलते हैं वो भी योगः कर्मसु कौशलम जानते नहीं थे, बट वो भी बोलते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम जो स्पिरिचुअल नीड है वो है सुप्रीम। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करते हैं हमको इस सुप्रीम स्पिरिट का साथ करना चाहिए। और आज के दिन में मैं जब देखता हूं हमारे सारे इंडस्ट्री में, सारे मेरे तो यहां इंजीनियरिंग भाई लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि इसका कितना जरूरत है आज के दिन में। आप सोचिए जो हजार साल पहले जो दुर्ग बना, हजार साल पहले जो मंदिर बना टूटा नहीं, आज हर तीन साल में देखिए छह ब्रिज गिर चुका है। जब भी कोई ब्रिज बनता है इसका मतलब वहां योग कर्मसु कौशलम नहीं है। वहां जब हमारे इंजीनियरिंग भाई काम करते हैं उस कुशलता के साथ काम नहीं करते, सब तो पढ़े हुए हैं क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहां योग कर्मसु कौशलम नहीं है। अब एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम आते हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब कंपेयर करता हूं, यहां देखता हूं कि हर चीज हर आदमी योग कर्मसु कौशलम के साथ करता है, बिना अटैचमेंट का साथ करता है। इसीलिए यहां चारों तरफ सफाई दिखता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार तीन साल से कर रहे हैं, हम भी सारे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, कहीं स्वच्छता आया नहीं। बट यहां मुझे लगता है कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान चालू नहीं हुआ था तब भी स्वच्छता होगा, क्योंकि यहां सब, मैं तो पहली बार आया हूं, तो भाई लोग जो बहुत बार आते हैं वो, मैं ये बिलीव करता हूं कि यहां होगा, क्योंकि यहां सब लोग दिल से करते हैं योग कर्मसु कौशलम। तो हर फील्ड में एक्सेलेंस के लिए हमें ये चीज को मानने चलना चाहिए। और मैं योग गीता की और एक श्लोक के साथ भी बहुत परिचित हूं, बचपन से इसी को करता हूं, हर दिन जब काम में जाता हूं ये बोल के जाता हूं कि योगस्थ गुरु कर्माणी संगम तक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धौ समम भूत्वा समतम योग युच्यते। माने भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बोलते हैं, हम सबको वही बोलते हैं, हम जब पढ़ते हैं ये सुन के जाते हैं कि योग के साथ कर्म कर, माने ध्यान के साथ कर्म कर, और सारे डिजायर को छोड़ के कर्म कर, और मुझे समर्पण करके कर्म कर। जब मुझे समर्पण करके कर्म करोगे एक्सेलेंस अपने आप आ जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। आज के हमने सभी पैनलिस्ट से सुना, लेकिन जो एसेंस है योगा, हाउ इट ट्रूली इज परफॉर्म्ड, कीपिंग इन माइंड टू एनहांस आवर वर्क प्रोडक्टिविटी, एंड डॉक्टर साहब इज एग्जाम्पल। उन्होंने जो लाइफ लीड किया है दैट इज ए लाइफ ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। एम्स जैसा पोस्ट को छोड़कर ही केम टू हियर टू कैटर टू द नीड ऑफ पुअर कार्डियक पेशेंट्स एंड रिवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ रहकर उनके जो पेड प्रोजेक्ट है कि कैड करोनरी आर्टरी डिजीज उसको कैसे ठीक किया जाए थ्रू राजयोग मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, सो दैट ए पुअर पर्सन कैन अफोर्ड कार्डियक केयर। तो ये सब चीज के लिए आपके पास बहुत अनुभव है, लेकिन हमारे पास समय कम है, फिर भी आप अवश्य शेयर करेंगे कि कैसे ट्रूली प्रोफेशनल फील्ड में रहकर हम योग को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गुप्ता जी,
डॉक्टर साहब
आवाज आ रही है आपकी? ओम शांति। सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से इस बात को अपने अपने अनुभव को रखा है, तो सबसे पहले तो मैं इन सबको थैंक्स देता हूं। मैं सिर्फ ब्रीफ में इतना ही बताना चाहूंगा, समय की कमी है, कि योग योगा कर्मेशु कौशलम, प्रैक्टिकली योग क्या है, राजयोग क्या है, बहुत सिंपल भाषा में उसको मैं समझा बताऊं आपको। तो आपको सभी को पता है ट्रूथ क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ इज एटर्नल, उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, ट्रूथ कभी बदलता नहीं है। सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है दुनिया में? गॉड। दूसरा ट्रूथ क्या है? आत्मा। आत्मा ना कभी पैदा होती ना कभी मरती है। परमात्मा ना कभी पैदा होता है ना मरता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, आत्मा परमात्मा का संबंध सदा है, एटर्नल है, देह के संबंध बदल जाते हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, रोल बदल जाते हैं, मटेरियल बदल जाता है, धर्म बदल जाते हैं, किंतु आत्मा परमात्मा का संबंध सदा ही रहता है। और चौथा है ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा। तो राजयोग क्या है या योग क्या है, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, इस सत्य को अनुभव करना, लिविंग द ट्रूथ, एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, बीइंग द ट्रूथ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते, ऑफिस में काम करते, घर में खाना बनाते, खेलते हुए, कहीं भी कर्म करते हुए इस अपने सत्य से जुड़े रहो। मैं कौन हूं? मेरा कौन है? मेरा उससे संबंध है, मेरा यहां संबंध नहीं है, मेरा माता पिता से, पति पत्नी से, बच्चों से संबंध नहीं है, उनसे मेरा फर्ज है, ड्यूटीज है, जो मैंने उनसे पिछले जन्मों में लिया है मुझे वापस देना है, लिया है तो देना है और दिया हुआ तो लेना है। ये संबंध ऊपर है, वहां से बैटरी चार्ज होती है, और यहां पे क्या होता है, नीचे क्या होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। वहां से शांति प्यार खुशी आता है, और यहां पर हमें सबको शांति प्यार खुशी बांटना होता है, अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, मां बाप को, भाई बहनों को, ऑफिस में जहां भी हम काम करते हैं, हमको शांति प्यार खुशी आनंद और आठों शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, तो ही हम अच्छा काम कर सकते हैं। इंचार्ज का मतलब भी क्या है? इंचार्ज, इन रह के अपने आप को चार्ज करते रहो, और जहां पर भी आप हैं, घर में हैं या बाहर हैं, ऑफिस में हैं या घर में हैं, वहां पर सबको शांति प्यार खुशी बांटते रहो, सबको संभालते रहो, सबकी केयर करते रहो। और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। परमात्मा इस स्टूपिड ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है वो कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। बीमारी क्यों आती है? चाहे डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, या कुछ भी बीमारी, आपको हार्ट की बीमारी हुई, डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, सिर दर्द हुआ, एस्थमा हुआ, पेट में दर्द हुआ, इवन हड्डियों की खराबी भी हुई, इसका कारण है मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, मुझे इंसल्ट किया, मुझे गाली दी, मेरा पैसे लेके वापस नहीं किया, मेरे साथ अभी तक जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। कर्मों का हिसाब किताब, खाली कर्म नहीं, कर्मों का हिसाब किताब। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको, 100 साल पहले अगर आपने 10 रुपया उधार लिया था, 100 साल के बाद उसका ब्याज 4,19,00,000 रुपया हो जाता है। तो ये कर्मों, अगर आपने किसी को पिछले दिन में 2 गाली दी थी 100 साल पहले, तो इस दिन में आपको 200 गाली खानी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने किसी का एक बार अपमान किया, तो आपको उसको कम से कम 200 बार अपमान सहना पड़ेगा। तो ये है कर्मों का हिसाब किताब, है ना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समझ आ गई है, और जो होने वाला सबसे अच्छा, क्योंकि अब हमारे बीज अच्छे हैं तो फल अच्छा ही होगा। तो इस एबीसीडी कहें, मैं इसको एबीसीडी कह देता हूं, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा माना परमात्मा, सी माना कनेक्शन संबंध, और डी फॉर ड्रामा। ये चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इस एबीसीडी को अनुभव करते रहो, विजुलाइज नहीं करना है, अनुभव करो, मैं ये हूं, मेरा वो है, हम सब आत्माएं हैं, ये मेरा पति है ये भी आत्मा है, पत्नी है वो भी आत्मा है, बच्चे भी आत्मा है, हम मेरे पिताजी भी आत्मा, माता जी भी आत्मा है, मेरा बॉस भी आत्मा है, मेरे नीचे काम करने वाले भी आत्मा, चपड़ासी भी आत्मा, भाई भी आत्मा है। तो जितना इसका करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी 30 विचार एक मिनट में रहती है, 90% विचार हमारे पास से या भविष्य से आते हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके 27 विचार खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 3 ही विचार रह जाएंगे, एबीसी रह जाएगा सिर्फ आत्मा परमात्मा संबंध, तो आपका हर काम में एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। यही है योगा कर्मेशु कौशलम, आपका हर काम एक्यूरेट होगा, आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, जो सोचेंगे वो होगा, समय पर विचार आएगा आपको, समय पर कर्म सिद्ध हो जाएगा, और आपका तन भी अच्छा रहेगा, आपकी जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है यहां पर शांति रहेगी, तो पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा अच्छा हो जाएगा, तो इससे आपकी सारी बीमारियां मन की और तन की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपका प्रोफेशनली आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, आप हर जगह टॉप करेंगे, फर्स्ट क्लास रहेंगे। मैं इसी शब्दों के साथ, आज टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देता हूं, ओम शांति। तो योगा मीन्स रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ।
डॉक्टर साहब ने बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड अबाउट ए बी सी डी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और आप सबको यही आग्रह है कि इसका जो डिटेल्स आप जब 7 डेज कोर्स करते हैं, जो हमारे सेंटर पे जाकर इसको इसका डिटेल्स में इसका रूट्स में जाएंगे, तो वो दैट विल बिकम मोर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव एंड मोर यूजफुल। तो हम सभी यही सीखा, बेसिकली योगा इज ए वे ऑफ लाइफ इन एवरी स्पीयर, एवरी सॉर्ट ऑफ एक्शंस वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ योगा एंड लीड ए ब्लिसफुल लाइफ। विद दीज वर्ड्स आई सिंसियरली थैंक ऑल द पैनलिस्ट हु हैव डिलीवर्ड देयर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑडियंस फॉर पेशेंट लियरिंग। सिंस वी आर वेरी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन आंसर राइट नाउ। Thank you very much.